ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 13 सिद्ध पुरुष का आचरण। इस अध्याय के आज 41 नंबर और 42 नंबर श्लोक है। ब्लैकबोर्ड में 42 नंबर श्लोक लिखा गया तो मैं 41 नंबर श्लोक स्वयं पढ़ लेता हूँ, फिर 42 साथ में पढ़ेंगे। क्वचित् स्नातानुलिप्तं सुवासा स्वगृहान्कृतः रथैव असौ चरे क्वापि दिग्वशः गृहवत् विभो। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ, फिर मैं राजा की तरह हाथी के पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ। किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नग्न फिरता रहता हूँ। बल समझो अहम निंदे न च स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेयः आशासे उत एकात्म्यं महात्मनि। शब्दात् नहीं, अहम मैं, निंदे निंदा करता हूँ, ना तो च भी स्तौमी प्रशंसा करता हूँ, स्वभाव जिसका स्वभाव, विषमम विपरीत, जन्म जीव या मनुष्य, एतेषां उन सबों का, श्रेयः चरम लाभ, आशा से चाहता हूँ, उतः निसंदेह एकात्म्यं एकात्मता, महात्मनि परमात्मा या परम ब्रह्म कृष्ण में। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। तात्पर्य, जो ही मनुष्य भक्ति योग पद तक पहुंच जाता है वही वह भलीभांति जान जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही जीवन का लक्ष्य है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, समस्त वैदिक वाङ्मय का यही आदेश है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। किसी की भौतिक गुणों के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में अच्छे या बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति उच्च लोगों को जा सकता है और बुरा व्यक्ति अधोलोकों को जा सकता है। विभिन्न स्वभाव के लोगों कभी ऊपर उठाए जाते हैं और कभी गिरा दिए जाते हैं, किंतु यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, प्रत्युत वह कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी रहे, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। ओम अज्ञानात् निरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साप्रजातं सह गण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सह गणललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमोहावदन्याय कृष्णप्रेम्य प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरवतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणामामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama नाहं निंदे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेयासासे उतैकात्यं महात्मनिः। विभिन्न लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उनकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। अच्छा, दो श्लोक है, पिछले श्लोक। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ, फिर मैं राजा की तरह हाथी के पीठ पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नग्न फिरता रहता हूं। हंसने क्यों आ गए, हंसी आ गई आपको? हैं? दोनों समय में संभाव रखना ना। तो इस श्लोक एक कहता ना, इस सिद्ध पुरुष का आचरण, इसका मतलब प्रमाण हो रहा है कि आप सिद्ध पुरुष नहीं बने होंगे। समझ जा रहे सिद्ध पुरुष का आचरण कैसे होता है? जैसे दूसरे अध्याय गीता में भी अंतिम श्लोक में भी भगवान ने कहे, स्थित प्रज्ञ का लक्षण, प्रजाहाति जदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मतुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है कि प्रजाहाति जदा कामन सर्वान पार्थ, आत्मा अपने अंतकरण में जिसकी संपूर्ण भौतिक इच्छाएं समाप्त हो चुका है, जिसके मन में कोई इच्छाएं नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की कोई भी भावना नहीं है, आत्मन्येव आत्मने तुष्ट, जो सदा आत्मा में संतोष रहता है, उसको कोई राजा बना दिया जाए या कोई रोड में छोड़ दिया जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी वो पांच महिला बिल्डिंग में है, एसी कमरे में रहता है, और कभी गंगा के किनारे कहीं ऋषिकेश में, कोई हिमालय में कहीं ऐसा ही दुखे के नीचे या कोई झाड़ी के नीचे वहां सो जाता है, ऐसा ही जमीन पर। लेकिन दोनों स्थिति में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैं? दोनों को समान स्तर पर देखता है। जैसा ही भगवान के द्वारा पूर्ण निर्भरशील होते हुए जिस स्थिति में, जैसे कभी कभी अच्छे खाना मिलता है तो बहुत पेट भर के खा लेता है, यदि कभी भूखा रहना पड़ता भी तो ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण जपना बंद नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भूखा रहे या खाना खाए, हमें फर्क पड़ेगा कि नहीं? हमें यदि खाना नहीं दिया जाएगा, अभी निर्जला कार्य से आने वाला है, फर्क पड़ेगा नहीं? दब कर नहीं, आप खाना नहीं दे जाएगा। लेकिन प्रहलाद महाराज भ्रमण करते करते ऐसा ही एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंचे थे जो परमहंस स्थिति में था। इस अध्याय में विशेष रूप में संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की क्या लक्षण होना चाहिए और कैसे आचरण करना चाहिए उसकी वर्णना की गई है नारद मुनि के द्वारा। लेकिन संन्यास आश्रम में रहने पर भी संन्यास आश्रम के भी कई स्तर रहता है, कुटीचक बहुदक हंस और परमहंस। तो यहां जो सिद्ध पुरुष का आचरण कर रहे हैं ये परमहंस स्थिति पर, पहले तो आचरण कहा गया अन्य अन्य सन्यासियों के क्या आचरण है, लेकिन ये जो परमहंस स्थिति पर जो होता है वो कभी कभी अवधूत की तरफ भ्रमण करता है। जैसे मां पहले भी ऋषभदेव के आचरण के बारे में वर्णन हो चुका है, ये कौन सा स्कंद सब हम पहले से अब सुन चुके हैं, कौन सा स्कंद में? पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव की जब
संन्यास आश्रम स्वीकार किए थे, घर सभी कुछ राज्य आदि परित्याग करके ही चले गए थे, तो उन्होंने ऐसे ही घूम रहे थे, वस्त्र तक भी धारण नहीं करते, ऐसे ही घूमते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई इनके पर पत्थर फेंकता था, कोई इनको थूकता था, कोई इनको गाली देता था, कोई इनकी प्रशंसा करता था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र हरि पक्षे सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोचे थे। तीनों गुणों की परे रूपये तात्पर्य उसी के आधार पर लिखे हैं कि प्रकृत में जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वह सिद्ध पुरुष होता है, वह जो शुद्ध भक्त होता है, वह जो परमहंस स्थिति में रहता है, तीनों गुणों की परे उसके आचरण होते हैं। साधारणतः संसार में सभी तीनों गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भूते प्रकृतिजान गुणान कारण गुण संघर्ष सब असत ज्वनि जन्म सो। पुरुष अर्थात जीवात्मा, पुरुष कहा गया कि जीवात्मा बद्ध अवस्था को अपने को भोक्ता समझ रहा है, और परम पुरुष भगवान का ही अंश होने के कारण ये इसमें छोटा पुरुष है, छोटा के तरह के हैं, इसलिए पुरुष प्रकृतिस्थ ही प्रकृति के द्वारा प्रकृति प्रकृति के अधीन में रहता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं प्रकृति को अपने कवल में कर लूँ, अपने अधीन कर लूँगा, लेकिन संभव नहीं होता। प्रकृतिस्थ प्रकृति के ही अधीन में रहता है। अभुंते प्रकृति जान गुणा प्रकृति के द्वारा प्रभावित होकर भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा कवलित होकर जैसी जैसी गुणों के प्रभाव में आता है ऐसे ऐसे उसके आचरण होते हैं। कारण गुण संघर्ष गुणों के संग करता, सत्व गुण के संग करेगा तो ब्राह्मण के गुण दिखाई पड़ता, कभी अध्ययन कर शांत रहता, दांत रहता, स्नान करता, चंदन लगाता, किताब पढ़ता है, भागवत बैठी पढ़ाई करता, जो पारम से पुलिस के सामने बैठी करता है, और कभी कभी राजा गुण के संग में आएगा तो क्या होगा, क्या करेगा राजा गुण के संग में आने से है? भाग दौड़ कर गया क्या, बुक बैग लेके ऐसा ही। ऐसे भक्तों की एक्टिविटी तो गुणों की परे होता, लेकिन फिर भी सबके नहीं, प्रारंभ से हमारे मन में जो पूजा मान प्रतिष्ठा इच्छाएं रहता तो फिर गुणात्मक नहीं होता है, गुण की प्रभाव से रहते हैं। राजगुण के प्रभाव से कोई भाग दौड़ करता है, इधर उधर को धूमधाम करना चाहता है, बड़ा इलेक्शन में बड़ा नेता बनना चाहता है, दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर नहीं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, और कुछ ना कुछ बड़ा आदमी इंपोर्टेंट आदमी बनना चाहता है, भाग दौड़ करता है। कभी तमोगुण के प्रभाव का आता तो क्या होता है, कुछ करना नहीं चाहता, चुपचाप सो जाता है। ट्रेन में जैसे देखे स्टेशन में से पड़े हुए हैं काले काले कपड़े, ऐसे फटा मटा ऐसे पड़ा रहता है, इसको वही ट्रेन से वो ट्रेन के अंदर से कुछ गिरा होगा तो रेल लाइन के साइड में वहाँ से कोई फेंक दिया होगा, उसको उठा के खाने में आनंद आता, बस चुपचाप कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा ही गुणों के प्रभाव से आकर व्यक्ति कभी कभी सद असत ज्वनि को भी प्राप्त करता है। कभी ये शरीर त्यागने के बाद फिर वो ऊर्ध्व लोक में जाता, कभी निम्न लोक में जाता है, ऊर्ध्व गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुण बुद्धिस्थ अधो गच्छति तामसा, तमोगुण प्राप्त कर निम्न ज्वनि में चले जाता है। लेकिन जो गुणात्मक व्यक्ति होता है तो उसको इसमें भी फर्क नहीं पड़ता है, उसने सोचता कि मेरे चाहे किसी भी हो, लेकिन उसकी एकमात्र इच्छा होता कि सदा भगवान की स्मरण में रहे, चाहे मुझे किसी गुणों के प्रभाव से आकर मुझे कभी पशु पक्षी की जन्म मिल जाए, या कभी मैं मनुष्य जन्म प्राप्त करूं, या कभी देवताओं की जोनी में भी चले जाऊं, लेकिन वो इसके लिए विचलित नहीं होता है, वो सोचता है कहीं भी रहूं, पशु पक्षी हो ही था के स्वर्ग वा निरहे तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हो जाए, किसी भी स्थिति को केवल वो चाहता है कि मेरी भगवान के चरण में, भगवान श्री कृष्ण के चरण में भक्ति का स्मरण रहे, भगवान के चरण अरविंद सदा मरी, ऐसे भावना रखते हुए तो गुणों की प्रभाव की तरह विचलित नहीं होता है, किसी भी स्थिति पर कैसे भी शरीर मिला, लेकिन उसकी मति भगवान के चरण में लगा रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने भ्रमण करते करते इस सिद्ध पुरुष के पास में पहुंचते हैं, और जिसके आचरण की वर्णन इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में से की गई है। तो ये सिद्ध पुरुष इस प्रकार गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर रखा था, तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त था। 14वां अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने भी गुणात्मक स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का लक्षण को वर्णन करते हैं। योमान अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतितैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मति को स्थिर रखता है, जो अन्य अन्य देवताओं के शरण में नहीं जाता है, कोई दूसरे व्यभिचारी वा व्यभिचारी स्त्री की तरफ अन्य अन्य जार पति में मति नहीं रखता, एक पति केवल स्वीकार किया, जो इसको अव्यभिचारिणी कहते हैं। जैसे स्त्री की मति यदि भिन्न भिन्न पुरुष में रहता तो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं, है? उसी प्रकार यदि कोई भक्त एक ही स्वामी को स्वीकार किया, कौन? भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणारविंद का आश्रय करके रखा और उन्हीं की भक्ति में पूर्ण रूप में समर्पित रहा, तो उसी को अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो उसके मन में किसी प्रकार का भौतिक इच्छा भी न हो, अन्याभिलाषित शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान तथा साचुज मुक्ति तथा भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त होकर अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की जो प्रचेष्टा में है, इसी प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है वही व्यक्ति कृष्ण तीनों गुण के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज अच्छे खाना मिल रहा है और कल खिचड़ी मिलेगा खाने के लिए, आज संडे में कोई फीस्ट दिया बहुत अच्छे अच्छे पन भोग बहुत अच्छे सुंदर प्रसाद हुआ, और नेक्स्ट दिन में कोई फीस्ट कोई स्पॉन्सर नहीं किया और मंदिर की तरफ से क्या बना दिया गया, सिर्फ खिचड़ी खिचड़ी पापड़, तो क्या करेगा? लेकिन जो आत्मतुष्ट रहने वाला तो फिर वो सब में संतोष दोनों को ठीक देखता है, बोला ठीक है भगवान के अरेंजमेंट, जो जिस दिन मिलता है उसमें प्रसन्न रहना, उसमें कोई चित्त में कोई इसकी प्रभाव नहीं डालता है? लेकिन यदि वो गुणों के प्रभाव से थोड़ा सा एजिटेटेड हो जाता है, कभी कभी देखते प्रसाद ठीक नहीं होता है, किसी कारण से कुछ हमारा भौतिक इंद्रिय तृप्ति एक सुविधा उनको प्राप्त नहीं पता, हम विचलित हो जाते तुरंत है, तुरंत अथॉरिटी का क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, समालोचना करना है, क्या है घर बार छोड़ के आइए खेती खाने के लिए खेती खाना है, धोती फट गया, मेरे को धोती भी नहीं मिल रहा है, नौकरी छोड़ के आया 40,000 का नौकरी छोड़ के इधर आया सेवा कर रहा हूँ, तो वो फटे धोती भी पहनना है, क्या है ये चल रहा है। लेकिन जब हम इस गुणों के प्रभाव से मुक्त, यहाँ पर जो लक्षण कहा जा रहा है प्रहलाद महाराज जिसके साथ चर्चा कर बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है किसके, प्रहलाद महाराज ने पूछिए उसके पास पूजा कर रहे हैं, इनको देखे जो सिद्ध व्यक्ति को देखे कि क्या वो कैसे ही पड़ा हुआ था जगह की तरफ मार्ग पर, ऐसे ही पड़ा हुआ था जमीन में, वो अपने खाना पीना के लिए प्रतिष्ठा नहीं कर रहा था, ऐसे पड़ा हुआ था लेकिन बहुत मोटा छोटा था, देख बहुत अच्छे हेल्दी व्यक्ति, और एक उत्तम वैष्णव ही परमहंस ही दूसरे परमहंस को पहचान सकता है, ऐसे सौर आदमी नहीं पहचान पाएगा, प्रहलाद महाराज ने पहचान सके क्योंकि वो स्वयं परमहंस स्थिति में थे, चाहे वो राजा की भूमिका राजा की राक्षसों की राजा की भूमिका निभा रहे थे लेकिन महाजन थे परमहंस थे, इसलिए भ्रमण करते करते इस व्यक्ति को जो देखे कि इसे मार्ग में पड़ा हुआ है इतनी मोटा व्यक्ति और कोई चिंता तगड़ा है प्रसन्न चित्त में है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति आकांक्षे, सबसे प्रसन्न प्रसन्न चित्त में रहना, न सोचति न आकांक्षे, सम सर्वेश भूतेषु, समस्त सभी भूतों में समभाव पूर्ण है, बड़ा प्रसन्न चित्त में पड़ने है, उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आया कोई इनको सम्मान किया प्रणाम किया दंडवत किया और दूसरा कोई अरे क्या करे थूक के चला गया पत्थर पर, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो प्रणाम किया उसको आशीर्वाद देना या जो थूक दिया तो उसको अभिशाप देना, ऐसा नहीं, वो जानता है कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, चलो है मान अपमान यो तुल्य, मान अपमान समान देखता है, समा शत्रु मित्र उसके भी सत्व मात्र है ही। तथा माना प्रमाण है शीत उष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित। ऐसा व्यक्ति कैसे होता ना, भागीता में कई श्लोक कहा कि भक्ति योग में जस्मान विजते लोको लोकान विजते जजह हर्षा मर्ष भय उद्वेग मुक्त जह सचने प्रिय। वो व्यक्ति मुझे प्रिय है जो दूसरे के द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं करता, बात स्वयं भी दूसरे का उद्वेग का कारण नहीं बनता है। चाहे हम दूसरे को उद्वेग नहीं दे रहे लेकिन दूसरे के द्वारा हम कभी भी उद्वेग हमको उद्वेग को प्राप्त होता है। कोई हमारे पर खामा खान पत्थर दिखाएगा तो क्या होगा, हम भयभीत हो जाते हैं नहीं है? तुरंत प्रतिक्रिया आ जाती है। कहते जस्मानद बीजते लोको लोकानमद बीजते जज, जो दूसरों को उद्वेग नहीं देता है बस दूसरों के द्वारा स्वयं भी उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है। स्थिति पर व्यक्ति ऐसा ही था जो सिद्ध पुरुष तो उसकी प्रभावित नहीं होता, पड़ा हुआ था कोई पत्थर फेंक देने से भी उसको उद्वेग प्राप्त नहीं होता था, जानता कि चलो भगवान की इच्छा से। अब कोई आता था दंडवत करता था वो भी कोई प्राप्त नहीं करता था, लेकिन हमको फर्क आएगा कि नहीं, हम जाते तो कोई बोलता प्रभु जी हरे कृष्ण, बड़ा हमारा मन में मुस्कान आ, मुख में मुस्कान आ जाता है, लेकिन दूसरा पत्थर दिखाएगा अभी अभी फेंकने वाला है आपको मारने वाला है, क्या होगा तुरंत हमारा जो आचरण में गति फर्क आ जाएगा तुरंत ही हमारा शरीर में। लेकिन सिद्ध पुरुष होता है, प्रहलाद महाराज की भी ऐसा स्थिति था, चाहे प्रहलाद हिरण्य किसी को कुछ भी कहे हैं, कई प्रश्न पहले की गोद में बैठा लेता था बेटा सोचकर, और कभी लेकर पहाड़ के ऊपर से फेंकता था कहाँ समुद्र पागल हाथी के पीछे सा फेंक देता था। प्रहलाद महाराज कोई फर्क पड़ता था, चाहे बचपन से बच्चे थे हैं, तो इसलिए वह किसी भी स्थिति पर सिद्ध पुरुष व सिद्ध महात्मा जो महाजन होते हैं परमहंस स्थिति में रहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें हम स्वयं देख सकते हैं हम कौन सा स्थिति पर है अभी है? हमें इस स्थिति में है जस्मान अद बिजते लोको लोकान्मत बिजते है जजा, जो स्वयं दूसरों के उद्वेग उद्वेग नहीं देता पर दूसरों के द्वारा जो उद्वेग को प्राप्त भी नहीं करता है ऐसा व्यक्ति हरिदास ठाकुर इसको उद्वेग नहीं था। अपने हरिभजन करते थे लेकिन लोग जब उनको उद्वेग देने के लिए चाहे इनको पिटाई भी किए कितना भी तो उनको भी फर्क पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था हैं। तो इसी प्रकार पुरुष के यहाँ पर वर्णन की जा रही है, प्रहलाद महाराज ने देखे और पूछे तो वो बता रहा था कि हैं कैसे प्रहलाद, वो भी कहा कि मैं सबके साथ बातचीत नहीं करता हूँ लेकिन आपको देखकर मैं समझ गया है कि आपके आप है मेरे स्तर पर हो, तो आपको इस बात बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसा ही अजगर वृत्ति धारण करके से पढ़ा हूं, कुछ करता ही नहीं बस दिखाई पड़ता कि कुछ नहीं करता है, पड़ा हुआ ऐसे ही बेकार का आदमी है, कुछ करता नहीं पीता बस रास्ता में ऐसे पड़ा हुआ, और इतनी मोटे कैसे बन के रहा है, मोटा छोटा बहुत आनंद में प्रसन्न चित्त में, व्यक्ति मोटा कैसे होता है, कैसे मोटा होता है व्यक्ति, खूब खाने से मोटा हो जाएगा हाँ? खाता सोता मोटा हो जाएगा, चिंता खाए गंडी कहते बांगली में हैं, नमक खाए हंडी, लूनो खाए हंडी, चिंता खाए गंडी। कोई मिट्टी के बर्तन में नमक रख दोगे तो क्या होगा, आस्ते 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 मिट्टी ने वो मिट्टी खा जाएगा नमक आस्ते आस्ते को। ऐसे यदि किसी व्यक्ति के मन में सबसे में टेंशन रहता है, चिंता रहता है, कई प्रकार की उद्वेग रहता है, तो व्यक्ति जितने खाने पर भी उसको शरीर तगड़ा नहीं होने वाला, जो हमसे टेंशन में रहेगा कभी तगड़ा नहीं होगा, सबसे में चिंता करेगा बहुत कुछ। और पनीर खाने पर भी है, डेली पनीर खाओ कितने भी खाओ, हमारा वो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते माया पर भी वो कहते कि भाई कितना प्रयास करता हूँ थोड़ा मोटा छोटा हो, और हर दिन उनके प्रसाद में पनीर ही रहेगा, वो पनीर खाते राबड़ी खाते बहुत कुछ खाते मैंने मोटा होने के लिए, लेकिन कोई नहीं ऐसा ही देख रहे कल आए होंगे बहुत प्रयास करते मोटा होने के लिए स्वास्थ्य, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा क्या रहता है, हमेशा चिंता है, टेंशन में यह करना वो करना वो करना, जब हमेशा टेंशन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी मोटा नहीं बन सकता है। ये जो सिद्ध पुरुष पड़ा हुआ था किसी के मन में कोई चिंता नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। जो संपूर्ण रूप में सिद्ध व्यक्ति मैंने आत्म सिद्ध है व्यक्ति, जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जिसकी चेतना संपूर्ण रूप में शरीर से रहित है, वो उसको ही फर्क नहीं पड़ता। तो सदा प्रसन्न चित्त में रहने वाला व्यक्ति बहुत आसान से मोटा हो जाता है, कोई टेंशन नहीं उसको। सारे रोग व्याधि भी चिंता के कारण होता है, जितनी चिंता के कारण, जो भगवान के चरण में शरणागत हो रखा हो, शरणागत व्यक्ति है वो कभी की सुख नहीं है। भक्ति ठाकुर कहते हैं क्योंकि वो जो शरणागत व्यक्ति है वो जानता है कि तुम्ही तो मारी बेजारे के तारे राखी के पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन, तब इच्छा बस त्रिभुवन, तुम्ही तो राखी बेजारे के तारे मारी के पारे, सकल विधि विधि तुमी, सकल विधि विधि तुमी, रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मत है, तब इच्छा टे भगवान, तब इच्छा टे बलवान। सब शरणागति में कहते भक्ति मठक रहे अवश्य राखी भी कृष्ण विश्वास पालन है, उसको पूर्ण विश्वास है कृष्ण मेरी रक्षक है, तो क्यों विचलित होगा है। वो जानते हैं भगवान जी मेरे मेरी रक्षक है तो फिर मैं क्या भयभीत रहूंगा। रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते है, ये सारे किस लिए होता हमारे मन में रोग व्याधि का भी भय। भक्ति ठाकुर कहते ये सभी भी कृष्ण के, जिसको कृष्ण में शरणागत है अपने पूर्ण विश्वास नहीं है कृष्ण के चरण अरविंद में, इसकी भय भय से वो दिखाई पड़ता है। रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मत है, आपकी इच्छा सही होता है। आप यदि किसी को मारना चाहते संसार में कोई बचा सकता है इसको, किसकी हिम्मत बचाने का, चाहे जयद्रथ को सारी घेर के रहे सारे महा महारथी, कौन भीष्म द्रोण कृपाचार्य सालो कर्ण सब घिर के रहे कि इसको इनका तक पहुंचना नहीं देंगे, किसको जयद्रथ को। भगवान चाहते तो जयद्रथ का विनाश हो, ये सब रक्षा कर पाए उसको नहीं। भक्त तो आया कि सूर्य अस्त हो गया, अभी अर्जुन का प्रतिज्ञा समाप्त हो गया, कहा था कि सूर्य अस्त पहले समाप्त करेगा, अभी तो कर नहीं पाया, अभी सब अग्नि में झांस लेगा, आगे बस बहुत जोर से आ रहा था भागवत के हंसते हंसते, लेकिन तुरंत ही भगवान कह के देखो सूर्य आ गए आकाश में। इसलिए भक्ति ठाकुर उसी में भी कहते कि आपका इच्छा से ही सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश प्रदान करते हैं। तभी इसलिए जो व्यक्ति के मन में ऐसे पूर्ण विश्वास है कृष्ण के चरण में पूर्ण शरणागत है तो उसे क्यों भयभीत रहेगा। रोगों शोकों मृत्यु इसमें किसी भी इसको भय नहीं होता है। वो जब समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, केवल गुणों के प्रभाव से मैं सही भाष जा रहा हूं, कभी इधर आए खाचे हाबुड़ हूं भाई मिछे माया वैसे जाछ वैसे खाचो हाबुड़ू भाई, माया के तीनों गुण के द्वारा प्रभाव से भाष जा रहे, इधर उधर भटक रहे हो, हाबुडू खा रहे हो, कभी ऊपर को कभी नीचे। लेकिन जब तुम स्वीकार कर लोगे, तुम अपने स्वरूप को पहचान जाओगे, तुम कौन हो, आमी कृष्णदास, ये समझ जाओगे, इसको अनुभव कर लोगे, तो फिर आमी कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आप दुख नहीं, और दुख नहीं होगा। ये प्रहलाद महाराज है भाई, ये सिद्ध पुरुष जो अवधूत पड़ा हुआ तो ये स्थिति पर है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता किसी चिंतन में, क्यों चिंता करेंगे है? वो संपूर्ण रूप में सिद्ध पुरुष जो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, तो आत्मा का कैसे विनाश हो सकता है। न मृियते जायते वा कदाचित, भगवत के प्रारंभ से ही कहा गया एबीसीडी नॉलेज है, लेकिन फिर हम इसको पढ़ते, लेकिन आचरण करना इतने आसान नहीं होता है। इसीलिए एक दृष्टांत दी गई है यहाँ पर कि प्रहलाद महाराज स्वयं महाजन है, और उन्होंने भ्रमण करते करते ऐसे व्यक्ति को देखे हैं और उसकी उनको पहुंचाने कि ये व्यक्ति सिद्ध कौन है? एक सिद्ध महात्मा है, निश्चित मैंने पहचान सके। कोई व्यक्ति के अधिकार को हम नहीं पहचान पा, कनिष्ठ भक्त नहीं पहचान सकता है किसको देख कर ये कौन सा स्थिति में है, ये कनिष्ठ वैष्णव इसको पहचान नहीं सकता है। लेकिन एक उत्तम अधिकारी को दूसरे उत्तम अधिकारी पहचान सकता है इस व्यक्ति की स्थिति कैसे है, कम से कम कोई मध्यम अधिकारी की स्थिति पर आने पर थोड़ा आइडिया लगा सकता है, आभास कर सकते हैं हम कैसा ये व्यक्ति कौन सा स्थिति में। लेकिन जो उत्तम स्थिति में है तो सभी को अधिकार क्या है, स्थिति क्या है, उसको पूरा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज स्वयं उत्तम वैष्णव थे और भ्रमण करते करते अवधूत को देखे तो वो पहचान गए इसकी स्थिति को देखकर, इसके आचरण को देखकर। हैं यदि वैसे अलग रही तरह पड़ा हुआ था, लेकिन वह इतनी मोटा था और उसके शरीर में मुस्कान था, लेकिन मुख में इसकी मुस्कान देखकर, इनकी तेज को देखकर, इनके आचरण को देख पहचान गए प्रहलाद महाराज की ये व्यक्ति निश्चित रूप में परमहंस स्थिति पर है। इसलिए उन्होंने प्रणाम किए और बड़े नम्रता से उनकी जिज्ञासा किए। और सिद्ध पुरुष ने जो व्यक्ति परमहंस स्थिति पर होता है उसके आचरण कैसे होता है उसके बारे में कहा। जैसे सन्यास की कई स्थिति है, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। कुटीचक प्रारंभ से जो रिनाउंस ऑर्डर लेता है वा सन्यास आश्रम को स्वीकार करता है, पहले कुछ पवित्र स्थान में देखते, तीर्थ स्थान में जाकर छोटा कुटिया बनाकर वहां रहकर अपना भजन करना चाहता है, बैठकर भजन करता है। लेकिन आस्ते आस्ते फिर वो सोचता है कि अरे भजन तो कर लिया, पढ़ाई कर लिया, शास्त्र जान लिया, प्रचार भी करना चाहिए, प्रचार के बिना कैसे होगा। फिर भ्रमण करता अलग अलग स्थान में भ्रमण करके फिर पिचिंग करता है, प्रचार करता है एक, और फिर आस्ते फिर वो हंस की तरफ दूध से दूध पानी मिला हुआ, लेकिन उनमें से क्या चुन लेता है, दूध को चुन लेता है, पानी को छोड़ देता है, सत्संग करता है और सत्संग से दूर रहता है, असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। फिर वो फिर भी उसके पास वो देखता है ये भक्त है या भक्त है, डिस्क्रिमिनेशन करने का उसके पास क्षमता रहता है। और जो दूध को स्वीकार करते हो अच्छे संग में रहता, पूरे संग को त्यागता है, जैसे भक्त भक्ति ने श्री उपदशा में कहा गया, तो उसी प्रकार वो भक्ति का अनुकूल को स्वीकार करता, प्रतिकूल को त्यागता है, ऐसे प्रकार वो आचरण करता है। लेकिन इसके परे भी जो परमहंस स्थिति पर रहता तो वो फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो किसी भी स्थिति पर रहकर तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त रहता है। कभी कोई राजा ने इसको इन्वाइट कर लिया अपने घर में और लेकर बहुत अच्छा ऐसी कमरा में बड़े अच्छे पर डल्लभ गद्दी में इसको सुलाया, बहुत छप्पन भोग बनाकर खिलाया, खाया, सोया, बस जड़ भरत जैसे उधर डकैत लोग पकड़ लिए इसको रास्ते में, तो जंगल में उनके खेती जब खेती का गाड़ मैंने इसके चौकीदारी करते थे, पकड़ के लेके काली के पास में बड़े देने के लिए, बोले बोले स्नान कराया अच्छा से और खाना बहुत अच्छा दिए खाने के लिए, खा लिए मना थोड़ी के खाना दे रहे थे, खा लिया अच्छा से। खाने के बाद बोले ठीक है माँ के पास सामने हो, बोला अच्छा आदमी है जो भी बोलते सो हल करता है, तो सिर रख दो, इसे बड़ी काट है इसका सिर रखो इधर, सिर भी हुआ रखनी दी है। लेकिन बलि का जब चढ़ाने वाला जो पुजारी जब खड़ग उठाया क्या हुआ, उनकी कोई चिंता था ना क्या, जगह उसको सोच रहे थे आप ऐसे करोगे भाई हम करेंगे ऐसे है। लेकिन वो सब खाए पिए आराम से, जो दिए खा पी के आराम से, स्नान भी अच्छे से कि खाना पीना जो भी दिए सो खाना भी खा लिए, खा पी के बस कोई गया अभी बड़ी माँ के सामने बड़ी कटा देगा, तो गर्दन सिर रखो गर्दन रखो इधर, वो आराम से देखा गर्दन वो भी खड़ग उठाने से शुरू कर दिया, पशु के समान व्यवहार बस कुछ नहीं है, इधर जो बाहर जाता है कोई जगह पशु की क्या है, यह आदमी है कि पशु है, जो इधर खा लेता बस फिर सिर रखो सिर में रख देता है, उसको भय नहीं है। अभी इसका खड़ग देखकर खड़ा है अभी काटने वाला है गर्दन को, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं, लेकिन इसको सहन नहीं हुआ। काली है माता काली जो इसके पास में बड़ी ना, तो वो खड़ग जो उठाया था उसी के खड़ग को खुड़ग को उसके हाथ से छीन कर उसी को पहले, भक्त को विश्वास रहता है अवश्य राखी में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे किसी भी स्थिति पर, जो कि सिद्ध पुरुष का अर्थ ही पूर्ण शरणागत भक्त, जो संपूर्ण रूप में शरणागत के सारे लक्षण को जीवन में उतार चुका हो। चैतन्य महाप्रभु तो इसलिए अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए अवतीर्ण हुए हमको ये स्थिति प्राप्त करने कैसे सिखाना है, सिखाए शरणागति भक्तर प्राण अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे धर्म, अत्यंत दुर्लभ प्रेम जो कि ब्रह्मा और शिवों को भी दुर्लभ है, ऐसा ही कृष्ण के चरण में जो प्रेम को प्रदान करने के लिए महाप्रभु ने अवतीर्ण हुए, लेकिन हम हमारे पास में पात्रता है नहीं तो हम इसको कैसे धारण कर पाएंगे, इसलिए उन्हें सिखा रहे हैं हम अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्तर प्राण, इसलिए शरणागति सिखाए। दैन्य आत्म निवेदन गतृते वर्ण अवश्य राखीवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिका, जो सिखाए। लेकिन जो व्यक्ति इसी प्रकार शरणागत संपूर्ण शरणागत हो चुका है, जो गुरु की प्रभाव से संपूर्ण रूप में मुक्त है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, मान अपमान ये तुल्य तुल्य मित्र अरिपक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोचते, तो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। इसलिए इस प्रकार लक्षण यहाँ पर भी वो जो आज सिद्ध पुरुष ने प्रहलाद महाराज कह रहा है कि ना हम निंदे चौमि, मैं ना किसी को निंदा करता हूं ना किसी की प्रशंसा भी करता हूं, स्वभाव विषमन जनन, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो लोगों के स्वभाव अलग अलग होता है गुणों के प्रभाव से, जो व्यक्ति जिस गुणों के प्रभाव में है उसकी वो ऐसा ही आचरण करता है, लेकिन ये गुणों के प्रभाव से कोई ऐसे आचरण करता है, लेकिन ये व्यक्ति तो स्वयं जीवात्मा भगवान का अंश है, गुणों के प्रभाव से ऐसा ही उसकी आचरण ऐसे क्षणिक है, यानी कि सब दिन ऐसे जन्म जन्मांतर ही आचरण रहेगा नहीं, अभी गुणों के प्रभाव से थोड़ा ऐसे ही उसके आचरण कुछ बिगड़ा हुआ है, कभी ये स्वभाव अलग अलग होता है लोगों के पास में, और कोई मुझे इसलिए स्तुति करता है कोई निंदा करता है, इसलिए मैं भी किसी की स्तुति का निंदा नहीं करता, तुल्य निंदा स्तुति, स्वयं जैसे दूसरे की निंदा स्तुति को समान समझता है, इसी प्रकार वो स्वयं भी किसी की निंदा या स्तुति नहीं करते हैं। सिर्फ सन्यासी को कहा गया कि आचरण कैसे होना चाहिए, सन्यासी बस कोई प्रणाम करता है और कोई सीधे चले जाता है और कुछ उसको कमेंट देकर चले जाता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता, किसको सन्यासी, सन्यासी कितने लोगों को प्रणाम करें, आप तो कोई आप चलते रास्ते में आप प्रणाम करते रहे, जो देखा प्रणाम करते रहे, वो प्रणाम करते रहेगा सबको, आप तो एक आदमी एक बार प्रणाम करेगा तो सौ आदमी जाते सौ आदमी प्रणाम करते रहेगा, तो वो प्रणाम करते रहेगा बस। इसलिए सन्यासियों के लिए यदि परम स्थिति में है तो उसको लागू नहीं होता है, वो कभी प्रणाम कर ही सकता कभी नहीं भी कर सकता, ऐसा ही चल सकता है रास्ते में अपने टेम केयर की तरफ है, कोई इसको प्रशंसा करता है कोई निंदा करता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह स्वयं भी किसी की निंदा नहीं करता है किसी का प्रशंसा नहीं करता है, कोई हमारा मित्र है इसलिए इसका प्रशंसा कर रहा है, वो बोलेगा आपको कुछ अच्छा बोल दिया तो इसलिए यार बहुत अच्छा आदमी कहते इसका पीठ में हाथता मित्र है, ऐसा काम सन्यासी का नहीं है। इसलिए परम स्थिति पर ये कहते कि ना हम निंदन अच्छा स्तोमी, मैं किसी की निंदा करता हूँ ना किसी की स्तुति करता हूँ, दोनों को समान देखते हैं, कोई मेरी निंदा करता है कोई मेरी स्तुति करता है, और इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्वभाव और विषमंग जनन, ये जो व्यक्तियों के स्वभाव से गुणों के प्रभाव से अलग अलग होता है, वो व्यक्ति का आचरण नहीं है सुबह इसका गुण का आचरण, गुणों के द्वारा प्रभावित होकर पुरुष गुणों के द्वारा मैंने जो जीवात्मा गुणों के द्वारा प्रभावित होकर ऐसे ही अलग अलग आचरण करता है, लेकिन ये आचरण परमानेंट रहने वाला नहीं है, अभी गुणों के प्रभाव से है इसलिए इस आचरण करता है, वो उसको करता नहीं मानता है जीवात्मा को, जानता है गुणों के प्रभाव से केवल ऐसे करता है, लेकिन जो करता हम मिनी मिति मन में थे कौन अपने को करता समझता है, अहंकार विमुढ़ात्मा प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वश अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहम मिति मन्यते, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने इसलिए जानता हूं कि स्वभाव से अलग गुणों के प्रभाव से व्यक्तियों के स्वभाव से अलग अलग होता है, इसलिए मैं किसी की निंदा करता हूं ना किसी का स्तुति करता हूं, मैं क्या चाहता हूं लेकिन ऐसे निंदा स्तुति नहीं करने पर भी एतेषां श्रेय आशा से मैं उनकी श्रेय चिंता, श्रेय और प्रेय कहते हैं दो शब्द है, श्रेय और प्रेय किसको कहते हैं? जो भौतिक दृष्टि से हमारा इंद्रिय तृप्ति के साथ हमको प्राप्त करने का जो प्राप्त करते हैं उसको कहते प्रेय। लेकिन श्रेय क्या करने, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना, वा भगवान के शरणागत हो, वा धाम में जाना। तो इसलिए मैं एपेसंग श्रेय आशा से, मैं इनके श्रेय की आशा करता हूँ, अर्थात इनको यह आशीर्वाद देता हूँ, कृष्ण मति रस, तुम्हारे मति भगवान के चरणारविंद में लगी जाए। चाहे मुझे कोई भी, मैं देखता हूँ सामने कोई मुझे पत्थर फेंकता है, कोई मेरी प्रशंसा करता है, कोई मेरा निंदा करता है, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन वरन मैं उनकी ऐसे ही आशा करता हूँ कि तुम्हारे मति भगवान के चरणारविंद में लग जाए, उनके श्रेय की कामना करता हूँ। एतांश श्रेय आशा से उतो कात्म्य महात्मनि, मैं इनको यही आशीर्वाद देता हूँ कि उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि वे परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे, अर्थात समझ जाए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं इससे कृष्ण से, मैं कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हूं, बा जीवात्मा ये समझ जाए कि मैं कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान जैसे गीता में कहते कि मम ही अंश जीवो लोके जीव भूत सनातन, प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही अंश है। इसलिए अंश का कर्तव्य क्या है, पूर्ण का सेवा करना, अंश का कर्तव्य पूर्ण का सेवा करना। इसलिए मैं इनको यही आशीर्वाद देता हूँ कि इसको कोई देखता कहे, मैंने किसी की निंदा स्तुति न करते हुए, लेकिन सभी को मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूँ कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ की चरण कमल में इसकी मति लगा रहे हैं, या उनके साथ में अपने संबंध को वो समझ सके। ऐसे आशीर्वाद मैं सभी को देता हूँ। प्रभुपाद ने श्री तात्पर्य लेते कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, तो भगवान ने शास्त्र के सारांश से ही कि वेद से सर्व धर्म विवेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चर्वा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये रहस्य को एक परमहंस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष जानता है, इसलिए वो स्वयं जो आचरण करता है उसी स्थिति में आने के लिए दूसरों को भी आशीर्वाद देते रहता कि वो भी इसको भगवान की इसी प्रकार शुद्ध भक्त बन सके, इसलिए उनको भी आशीर्वाद देते रहता है। वो जानता है कि विभिन्न स्वभाव के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण कभी व्यक्ति को ऊपर उठाए जाते हैं और कभी नीचे गिराए दिया जाता है, किंतु वह जीवन का लक्ष्य नहीं है कि कभी पुण्य कर्म करके कोई स्वर्ग में चले जाता है और पाप कर्म करके नीचे आ जाता है। सतगुण रजगुण तमगुण के प्रभाव रहकर भिन्न भिन्न जोनियों में भ्रमण करता है, लेकिन ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं, उसको पता है कि मुझे देवता बन के अमृत पान करना, ये भी मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं, या सूअर बनकर क्या क्या करना, ड्रेन के अंदर मुख घुसा मुख डालकर वहां से कीचड़ खाना, गंदगी खाना, ये मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं, जानते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए एक सिद्ध पुरुष इसको जानता है, और जो संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, यही भालो यही मंद सभी मनोधर्म, जैसे मन का धर्म ये अच्छा है बुरा है, पुण्य कर्म या पाप कर्म ये दोनों भक्त नहीं करते हैं, ये कहते कि दोनों ही त्यागने का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी कहा करते कि ड्राई स्टोन एंड क्या है लिक्विड स्टोन, स्टूल ही स्टूल होता है किसी भी स्थिति पर, यानी कि हम जो इंद्रिय तृप्ति के साधन स्वर्ग में जाकर इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर लेंगे बहुत होगा तो वह अच्छा है, बा यदि हम इंद्रिय तृप्ति साधना प्राप्त नहीं होता स्वर्ग जोनी में चले जाते बा निम्न जोनी में चले जाते वह बुरा, ऐसा नहीं, किसी भी स्थिति पर ये इस प्रकृति का ही स्वभाव है, वो स्वर्ग का जोनी में रहकर भी वो अपने को बड़ा सुखी समझता है, समझता कि नहीं, वो दुखी मानता है कभी उसको दुखी को समझता है वो कभी नहीं, वो इंद्र स्वर्ग छोड़कर भी स्वर्ग बन गया था, बना था कि नहीं, एक बार है अभिशाप दिए थे इसको दुर्वासा ने, स्वर बन गया, लेकिन वो सोचता था मैं को अमृत पान कर रहा था कितना अच्छा था, अभी ड्रेन में कीचड़ खा रहा अच्छा नहीं, ये सोच रहे नहीं। प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि जिस स्थिति में जो रहता है तो उसको ऐसा ही भावना में ला देता कि वो सोचता कि मैं बहुत आनंद में, हम सोचते कि वो सुखी है, इंद्र बहुत अच्छा है अमृत पान कर रहा है, लेकिन और स्वर कीचड़ खा रहा है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वही इंद्र जब सुअर बन जाता तो वो सोचते कि नहीं अच्छा है, हैं कितना सुंदर, मेरी मोटी पत्नी है और 15-15 बच्चे हैं, पुत्री बोल रहे हैं, हैं अरे वहाँ कितना टेंशन है स्वर्ग में, अरे कितना टेंशन है क्या। तो इसलिए परम स्थिति में जो संत है उसको समझते हैं स्थिति को, उनको कुछ फर्क नहीं है। कोई कोई पुण्यात्मा पुण्य कर्म करके सत्वगुण में आकर देव देवता की पूजन करके हैं स्वर्ग में चले जाता, बा कोई तमगुण की अधीनस्थ होकर प्रभाव से आकर कोई नीचे निम्न पशु जोनि में चले जाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जानता है कि भक्त को इसमें कुछ लेना देना नहीं है, पुण्य कर्म करना और पाप कर्म करना वो भक्त का काम नहीं है। भक्त क्या करता है, केवल भक्ति करता है। सत्वगुण रजगुण तमगुण के परे विशुद्ध सत्व की स्थिति पर आकर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लग जाता है, हैं अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाता है। ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति उच्चते, इसी प्रकार वो कभी कभी बाह्य रूप से ऐसे इंद्रिय पड़ा रहता दिखाई पड़ता कुछ नहीं करता है, लेकिन इसी चौथा अध्याय में भगवान कहे कि कर्मण्य अकर्मण्य ज पश्यत अकर्मण्य च कर्मणि स बुद्धिमान मनुष्य। तो वो बुद्धिमान मनुष्य जो कर्म करता हुआ व्यक्ति की अंदर में क्या देखता है, अकर्म को देखता है, और अकर्म के अंदर में कर्म को देखता है, वो बुद्धिमान है। बाहर से परमांश व्यक्ति दिखाई पड़ता है पड़ा हुआ है, जब कुछ नहीं करता है, लेकिन वो अंतकरण में सदा कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ है। इसके मत किसमें लगा हुआ, समाधिस्थ भगवान के नाम गुण लीला बाह्य भगवान के रूप गुण लीला चिंतन में तल्लीन रहता है। इसीलिए तो उसको बाह्य ज्ञान से कोई फर्क नहीं, बाह्य आचरण बाह्य मैंने कुछ क्रियाएं उसको विचलित नहीं कर सकता। और इसी प्रकार कोई अकर्म के मध्य में कर्म करते हुए देखता है, कर्म के बीच में भी अकर्म को देखता है, सब प्रकार का कर्म करते हुए भी व्यक्ति को समझा जाता कि कुछ भी नहीं करता है। कैसे, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। प्रभुपाद जी ने कहे जूह में क्लास दिए बात कक्षा कहे कि प्रकृत में जो भगवान के शुद्ध भक्त है तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त है तो सिर्फ 24 घंटे कृष्ण के चिंतन में चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट कृष्ण, चैंटिंग हियरिंग रिमेंबरिंग कृष्ण, उसके और दूसरे कुछ एक्टिविटी नहीं रहती है। तो फिर वो आकर रूम में क्या करते थे, कमरे में पहुंच गए, सेक्रेटरी आ गया बोला कि यहाँ से फोन आया, इधर फोन आया, इतना लेटर आया, तो सेक्रेटरी बैठा कर सब लेटर कैंसिल करने के लिए डिक्टेट किए, फोन कहीं से लॉस एंजल्स से फोन आ गया तो फोन उठा रहे थे, कहीं से लोगों से बातचीत करते थे, वही कमांडर की कंप्लेन था ये ब्रह्मचर्य से उद्धत है मानता नहीं किसको, उसको डांटते थे। और कोई कहते थे कि बहुत अच्छा सेवा करता है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई प्रशंसा करता है, अच्छा थे, लेकिन वो कक्षा में कहे थे क्या जो भक्त होता क्या करता, 24 घंटा भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण में लगा रहता। तो यहाँ पर कक्षा में एक लाइफ मेंबर बैठे थे, पी एल सी टी बैठे थे, वो उनको पता नहीं कैसे, तो वो आकर रूम में देख रहे थे, 2 घंटे बैठे हुए कोने में देख रहे थे, 2 घंटे की जगह से प्रभुपाद ने भिन्न भिन्न करा कार्य में व्यस्त रहे। तो बोले कैसा प्रभुपाद, आप अभी वो बैठे सब चला गया, प्रभुपाद ने सेक्रेटरी सबको आउट किया, बोला नौ मैंने अभी प्रभुपाद ब्रेकफास्ट नहीं अभी लिए नहीं अभी तो चलो बाहर, अभी प्रभुपाद जी ब्रेकफास्ट चलाना है। लेकिन ये बैठे थे उन्हें प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखे मुस्कुराए, कहे कि क्या आपको सेठी जी आपको कुछ बोलना है, आप बैठे हो सेक्रेटरी इनको रहने दो कुछ बोलना चाहे पूछे। तो कहे हाँ, अभी आपने क्लास दिया कहा कि जो है जो सिद्ध पुरुष होते सिद्ध महात्मा होते भगवान के महान भक्त होते हैं तो 24 घंटा क्या करते, श्रवण कीर्तन स्मरण में लगे रहते, उनकी कोई दूसरा एक्टिविटी काम नहीं रहता। लेकिन आपको तो हम समझते कि आप उसी कैटेगरी के हो, एक शुद्ध भक्त हो श्रवण माने, लेकिन आप रूम में बैठा में इतने समय देख रहे आप कई प्रकार ये क्या कर रहे, कहीं फोन में बात कर रहे, किसको गाली दे रहे, किसको डांट रहे, किसको प्रशंसा कर रहे, कितने लोगों को कितने प्रकार के काम और डिक्टेट कर रहे, लेटर लिखा रहे, क्या क्या मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से। लेकिन आप फिर श्रवण कीर्तन कैसे कर रहे हैं 24 घंटे, कर्मण्य अकर्मण्य जह बसे, वो कर्म देखते बाहर रूप से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सभी किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तुमने पीएल सेठी को बोले थोड़ा पीछे हो, गिरिराज स्वामी एक बार कहते थे ये स्टोरी, बोले थोड़ा मेरे यहाँ कान रखो, कहाँ पीठ में मेरे दोनों की, यहाँ कान रखो। पीएल सेठी वहाँ कान रखे, प्रभुपाद तब भी कुछ लिख रहे थे डेस्क में, प्रभुपाद मुख में मुस्कान था, लिख रहे थे, और वो पीएल सेठी क्या सुन रहा था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब प्रभुपाद का टेप चलाते हुए देखे, जब टेप चलाते थे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसका आवाज सुन तो वो उनकी लिख रहा था, प्रभुपाद बोल रहे ना, प्रभुपाद कुछ बोल नहीं रहे, वो अपना दिखा रहे कुछ लिख रहे हैं। ऐसा दो चार बार कई बार सिर्फ फिर आता फिर देखता है, फिर ऐसे होते थे तो समझ गया, तो सामने आकर साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करके गिर पड़े। कर्मण्य अकर्मण्य जह पश्य, इसलिए गहना कर्मणा गति, भक्तों के आचरण को सिद्ध पुरुष के आचरण को समझना आसान नहीं है, लेकिन जो सिद्ध पर जो उसी स्तर पर रहने वाला परमहंस प्रहलाद महाराज जैसे थे तो उन्होंने पहचाने इसको। ये अजगर वृद्धि में पड़ा हुआ था मार्ग पर, लेकिन बहुत तगड़ा था, मुख में मुस्कान था, इनके शरीर के तेज को देखकर, इनके आचरण गतिविधि को देखकर प्रहलाद महाराज पहचान गए। सिद्ध पुरुष को जब पूछे तो वो जानते हुए भी कि प्रहलाद महाराज सब पता है, तो सिद्ध पुरुष भी कहा मैं जानता हूँ आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जिज्ञासा करने दूसरों के हित के लिए है, दूसरों को ज्ञान होना चाहिए कि एक सिद्ध आचरण सिद्ध पुरुष का आचरण कैसे होना चाहिए, उसके लक्षण कैसे होता है। हाँ, इसलिए सिद्ध पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं बरतता, प्रयुक्त वह कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सुखी रहे, जीवन का चरण लक्ष्य है। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, कोई प्रश्न है? माइक
हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे आपने बताया कि ना वो प्रशंसा करते हैं ना निंदा करते हैं किसी भी कार्य की, साधारणतः हम सुनते हैं कि जो महान भक्त होते हैं वो निंदा नहीं करते, परंतु थोड़ा सा भी गुण होता है इसको पूरा फैन करते हैं, स्पिरिट करते हैं, तो इसको कैसे समझे कि वो प्रशंसा भी नहीं करते?
तो इसलिए हम सब स्थिति पर है। वो कौन सा स्थिति में? हम सब स्थिति पर, हम सब स्थिति में व्यक्ति मधुमक्खी की तरह होता है, बा अच्छे गुण को मैंने मधु लेता है, जैसे पानी और क्या मिला हुआ दूध उसमें से क्या पीता है, दूध पीते पानी छोड़ देता है, वो फिर डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष जो परमहंस स्थिति पर है, ये सबके परे परमहंस जो होता है उसको कोई फर्क नहीं, उत्तम गति वैष्णव और शत्रु मित्र कुछ भी देखता नहीं, उसको चोर और संत में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसके आचरण सबके लिए सभी के हिताकांक्षी रहता है, वो भेद नहीं देख पाता है। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु में क्या अंतर है उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो लगता है कि सभी कृष्ण की भक्त, वो सोचते हैं कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, ड्रामा चल रहा है। इसलिए अपने अपने स्थिति पर रहकर वो सदा क्या करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम लेकिन फिर भी सद्गुरु के निर्देशन की पालन करते हुए उसको मध्यम स्थिति के आकर प्रचार करना पड़ता है। प्रचार कैसे शास्त्र का आधार करते हैं, प्रचार कर किसके काम है, मध्यम अधिकारी के काम है, लेकिन फिर भी सारा जगत की कल्याण करने के लिए कभी कभी सिद्ध महाप जो उत्तम वैष्णव भी प्रचार कर मध्यम स्थिति के सेवा को स्वीकार करके प्रचार करते हैं। इनकी यही पहचान है कि यदि कोई उत्तम वैष्णव मध्यम स्थिति में आकर प्रचार करता है तो वो अकेले ही पूरा विश्व में प्रचार कर सकता है, ब्रह्मांड तालित शक्ति धरे जने जने। लेकिन उनकी मुख्य काम नहीं है प्रचार करना, कभी वो प्रचार कर भी सकते लेकिन यदि गुरु का आदेश है, यदि नहीं है तो अपने भजन भी कर सकते, गुरु के सरदास बाबा जी महाराज तक बस भजन करते, उनका आदेश नहीं था कि प्रचार करें, प्रभुपाद जी का आदेश था उनके गुरु का, किसके ठाकुर का, इसलिए प्रचार करता था। इसलिए प्रचार कर उत्तम अधिकारी वैष्णव के मुख्य काम प्रचार करना नहीं है, वो गुरु आदेश पर निर्भर करता है, उनके पूर्ववर्ती आचार्य ने निर्देशन किया है उसके प्रति है। तो इसलिए गुरु का जैसे गुरु संलग्न थे गुरु विश्वदास बाबाजी महाराज रहे, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का भजन करते रहे अपने, लेकिन इनके आदेश नहीं था उनकी परंपरा से, उनके सदगुरु से आदेश नहीं था कि प्रचार करने का, इसलिए वो काम करते थे। प्रभुपाद जी को पार्टिकुलर आदेश हुआ किसके, उनके गुरु महाराज के, पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, इसलिए उन प्रचार कर दो, गुरु आदेश को फॉलो करते हुए प्रचार में लगे रहे। लेकिन परमहंस स्थिति में जो रहते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो किसी की निंदा प्रशंसा चुगली इसमें कुछ होगी भेद नहीं पड़ता। इसलिए उनकी परिस्थिति का संत की उदाहरण दी गई ऋषभदेव पंचम स्कंद में, और यहाँ पर ये सिद्ध पुरुष का उदाहरण दी जा रही है, प्रहलाद महाराज उसको इंटरव्यू कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या लक्षण है। लेकिन इस स्थिति में इतनी आसान से नहीं है आना, इतना आसान नहीं है, बहुत उच्च स्थिति में हम कह सकते हैं शरीर नहीं आत्मा है, पढ़ लिए गीता समझ गए, लेकिन इसको आचरण करना इतना आसान है, एक थप्पड़ लगेगा तो विचलित हो जाते हैं। ऐसा है कि हरिदास ठाकुर है ना, क्या 22,000 में पिटाई करने पर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष का आचरण कर कह रहे कि ये सन्यास आश्रम के विशेष में अध्ययन सन्यासियों के लिए निर्देशन है, लेकिन टॉप मोस्ट आश्रम जो है पूरे परमहंस स्थिति पर जो पहुंच गया, तो परमहंस संस्थान के संत की एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, उसके आचरण कैसे होता है, हैं? लेकिन वो स्थिति इतनी आसान नहीं है। लेकिन आप ऐसे परमहंस नहीं बनने को प्रचार छोड़ देंगे, अजय गुरु पढ़ जाए ऐसे रास्ते में पढ़ा रहा जो मिलेगा खाएगा। संभव है बोलो, जो मिलेगा ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़ा रहा होगा, जो मिलेगा खाएगा, जो पहले आपको कोई कपड़ा दिया था पहनूंगा, नहीं दिया था ऐसे पढ़ा रहूंगा, ऐसे हो सकता कभी ठंडी गर्मी है मात्रा स्पर्श उसको पहुंचते शीत उष्ण सुख दुख रहा आगम पाई ने नित्यम तुम तो तीखे सर भारत सहन कर सब कुछ संभव है, इसलिए वो स्थिति बहुत हायर स्थिति है, बहुत उच्च स्थिति है। लेकिन हम कम से कम हमसे तक तो जाए परमहंस बनना और थोड़ा, लेकिन हमस स्थिति में आने पर कम से कम क्या डिस्क्रिमिनेशन करना, दूध को छोड़ पीना और पानी को छोड़ देना, मधु लेना गंध के नहीं है, मधुमक्खी का व्यवहार नहीं करके मधुमक्खी का व्यवहार करते हैं सबसे मधु अच्छा गुण को देखें, लेकिन परम स्थिति पर उसको जो फर्क नहीं पड़ता, वो सभी के कल्याण चिंतन करता है, ये रे भा वेद विषय सबके वेद विषय बन कर रहता है, सभी के हिताकांक्षी रहता है, सभी को आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे बच्चे भगवान के चरण में लग जाए बस।
महाराज भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव से 11वें स्कंद में यही चीज बताते हैं, बोलते हैं किसी की निंदा या फिर किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए, द्वंद्वों से निंदा या फिर स्तुति नहीं करनी चाहिए, द्वंद्वों से बचने का ये काफी सरल तरीका है, तो इसको कैसे
समझा नहीं आपका प्रश्न
भगवान ना भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव गीता में उद्धव से कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए ना ही किसी की स्तुति करनी चाहिए,
तो वही तो ये कह रहे हैं श्लोक, तो वही कह रहे हैं श्लोक, तो वही कह रहे हैं ना,
तो हमें
क्या कह रहे हैं, नाम निंदे स्तोमि, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ किसी की स्तुति भी
नहीं, वैसे हमें भी करना चाहिए,
आप उस स्थिति में आओगे आप प्रणाम से बन जाओगे तभी ना, अभी उसके इमिटेशन मत करो, आपको इमिटेशन नहीं कर सकते, इमिटेशन कर पाओगे इमिटेशन नहीं, कम से कम हमसे बनो फिर परमहंस बनने का कोशिश करोगे, बोला हमसे का स्थिति इसलिए अभी परमहंस का आचरण हम नहीं कर सकते, तुरंत रातारात इमिटेशन नहीं कर सकते, आप इसे कहें लोग कहीं पागल है, वो जैसे हरिदास ठाकुर ने क्या वो सांप खिलाने वाला डिब्डी बजा रहा था तो वो भाव में नृत्य करने लगे तो दूसरा ही सोचा क्या, अरे वो भी कच्चे वह कच्चा भीड़ के आ गए हरिदास ठाकुर के साथ में इमिटेशन कर क्या हुआ है ना, पिटाई सारे लोग थप लगाए थप्पड़ इसको एक इतना टाइप इसके ऊपर थप्पड़ लगा हजार लोग पिटाई किए उसमें कि इमिटेशन करने महाभागवत वैष्णव को परमहंस को जब आप इमिटेशन करोगे हालत यही होगा कोई गाय सोचेगा नहीं कोई सुअर सोचेगा कि मैं गाय बन जाऊंगा संभव है सुअर सोचेगा कि मैं व्रत रखूंगा अभी से तट्टी पट्टी खाना छोड़ दूंगा गंगा के किनारे में जाकर गंगा मिट्टी शरीर में लगाकर स्नान करूंगा गंगा जल में डेली और सब ऐसे कितने भी प्रयास करने पर भी ये उस सोर का शरीर में जब तक है उसको लोग सोर ही कहेंगे नहीं होगा है इसलिए हम इमिटेशन नहीं कर सकते लेकिन अभी जिस स्थिति में है उससे फिर आस्ते आस्ते गुरु निर्देशन में हम सब स्थिति पर आने से बहुत वायर है हम सब भी पहुंच जाए कम से कम वो अच्छे को स्वीकार करें बुरी को त्याग लेकिन परमहंस और हायर स्टेज है ऐसे बहुत कम दिखाई पड़ते हैं संसार में परमहंस लोग बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते
भारत ये जो श्लोक है इसे कनिष्ठ लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये जो श्लोक है इसे कनिष्ठ लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है
मतलब जानना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य तो ये है लेकिन ये बहुत हायर है अभी मैं कहां पर हूं पहले परमहंस के पहले क्या है अन्य स्तर से है ना परमहंस कौन सा स्तर में जो प्रेमी भक्त है जिसको प्रेम प्राप्त हो चुका है अभी हम तो कहां पर है साधक का स्तर बताया गया आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति अनर्थ ही निवृत्ति नहीं है निष्ठा रुचि आसक्ति भाव जो प्रेम प्राप्त कर चुका है जो भगवान चरण में प्रेम प्राप्त कर चुका है जिसको दिन रात कृष्ण में तल्लीन रहता है उसको कुछ संसार में लेना देना नहीं रहता वो संसार को नहीं देखता है स्थावर जंग में देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति तो वो जीवन का लक्ष्य है लेकिन ये जंपिंग नहीं कर सकता
मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसको फॉलो तो इमिटेट नहीं कर सकता
आप जानना ये हमारा लक्ष्य है जीवन का हमारे जीवन का ये लक्ष्य है स्थिति में आना लेकिन इमिटेशन हम नहीं कर सकते तो हमारा स्थिति को जानते हुए हम स्टेप स्टेप जाने के लिए प्रयास कोशिश करें अभी पहले हमारा अनर्थ को समाप्त करें और अनर्थ है इनको पहले समाप्त करने के लिए चाहें
महाराज और मतलब डेली जो डे टू डे लाइफ है उसमें ये मतलब मेरा ऐसे होता है कि ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत नहीं होती है वो ऑटोमेटिक आ जाता है
केवल बैड हैबिट्स परमहंस वैष्णव का लक्षण क्या है बताया जा रहा है जो परमहंस है उस उनके आचरण में ये लक्षण दिखाई पड़ता है तो आप परमहंस है नहीं ना
वो तो है नहीं हूँ वो बात नहीं करो मैं ऐसे करो कि यहाँ से जैसे कहा है ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करना तो हमारे लेवल पे भी कुछ तो उसके लिए
इसको इमिटेशन मत करो आपको ये श्लोक का फॉलो करना नहीं आपको जानना है कि परमहंस स्थिति की कैसे लक्षण होता है आप इमिटेशन नहीं कर सकते फॉलो करना है प्रहलाद महाराज की शिक्षा को फॉलो करो प्रहलाद महाराज क्वेश्चन आंसर कर रहे ना इधर वो इंटरव्यू ले रहे परमहंस स्थिति में रहने वाला एक वैष्णव से इंटरव्यू ले रहे उनका आचरण कैसा क्यों ऐसे करते क्या है वो बता रहे लेकिन हमारा काम है उसको इमिटेशन नहीं करना बरन वही प्रहलाद महाराज जो शिक्षा हमको दिए उसको फॉलो करना है ठीक है अनुकरण और अनुसरण दोनों में अंतर होता है वो जैसे करना मैं ऐसे ही करूँगा ये अनुकरण कहते हैं अनुसरण वो जैसे हमको शिक्षा दिए ऐसे करना हमारा स्थिति जानकर महाजन लोग हमको शिक्षा भी दिए हैं प्रहलाद महाराज की शिक्षा इतनी सुंदर शिक्षा यही सप्तम स्कंद में पिछले दिया तो उसकी फॉलो कीजिए हैं लेकिन ये तो बहुत हायर स्टेज है लेकिन जानना चाहिए कि लक्ष्य ऐसे ही इतनी ऊपर जाना है हमको लेकिन हम है कहाँ हमें और हम ये रात रात इसकी इमिटेशन नहीं करते इमिटेशन करेंगे तो थप्पड़ खाना पड़ेगा कोई रातारात हरिदास ठाकुर नहीं बन सकता है रातादास ऐसे रातारात ऐसे सिद्ध पुरुष महात्मा ऋषभदेव नहीं बन सकता है ठीक है इसी के लिए इसलिए छोड़ छाड़ के पूरा राधा कुंड पहुंचना कितना डेंजरस है जानना चाहिए इतना आसान नहीं है अभी हमारी स्थिति को समझें और फिर महाजनों के मार्गानुसरण करें उन्हें जैसे शिक्षा दे रहे हैं उसको फॉलो करें ओके ठीक है
एक्चुअली महाराज एक ही सेकंड मुझे थोड़ा फिर मैं मेरी गलती है होगी पूछते हैं
और कोई प्रश्न है हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।